Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari Om. यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरतम् स्मरामि प्रातस्तम् निगम वरवीति प्रचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण नारायण सर्वं येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद् नान्तःप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नोभयताप्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते सयात्मा सविज्ञेयः ये आत्मा पहले क्या नहीं है ये बताते हैं। जहां जहां ये आत्मरूप से उपलब्ध हो रहा है वहां वहां उस उपाधि का निषेध करके उसको शुद्ध करते हैं। तो मन में हो रहा है उपलब्ध तो होता रहता है, कभी इसकी अनुपलब्धि नहीं होती है। अगर केवल इसी सूत्र को मनुष्य पकड़ ले कि आत्मा तो हर समय उपलब्ध हो रहा है होता है नहीं हो रहा, क्या हम किसी क्षण आत्मा से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बस पहचान की बात है। तो सिर्फ इतना ही समझ लें कि हम हर समय आत्मा में ही हैं, एक आत्मा ही है, दो आत्मा ही है, सब भी आत्मा है, मैं भी आत्मा है, वह भी आत्मा है। और जब हम आत्मा कहते हैं ना तो उसमें अनात्मा का निषेध अपने आप हो जाता है। मैं कहते ही हम यह से अलग हो ही जाते हैं। यह कहने पर तो हम मैं से अलग नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहने से यह से अलग हो जाते हैं। अब इसमें दिक्कत यही होती है कि मैं इतना अभिनिवेश हो चुका है शरीर में कि जहां मैं बोला और शरीर में बैठे, चाहे स्थूल में बैठे चाहे सूक्ष्म में बैठे। कारण का तो बस नाम ही सुनते हैं शास्त्र में, उसकी अनुभूति ऐसे नहीं होती जैसे स्थूल सूक्ष्म की होती है। असल में वो कारण शरीर सूक्ष्म रूप में ही रहता है, और ये तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, ये भी कारण ही है। बहुत बड़ा वृक्ष हो गया तो क्या हुआ, वो बीज ही तो है जो इतना बड़े वृक्ष के रूप में देख रहा है। तो इसलिए कहा कि नान्तः प्रज्ञम, जो जो उपाधि जहां जहां उपलब्ध होती है बस उसको जरा सा हटा दो। वो दृष्टांत भी आप दृष्टांत से बात जरा समझ में आ जाती है। बाबू संपूर्णानंद जी थे ना, यूपी के गवर्नर भी रहे, चीफ मिनिस्टर, तो लेखक अच्छे थे वो, साइंस के ऊपर थे तो बीएससी सिर्फ, लेकिन पुराने जमाने के तो बीएससी भी बहुत काबिलियत रखते थे, तो उन्होंने साइंस के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे, तो जब लिखते थे तो बाल आगे को आ जाते थे, तो विजन आंखों के ऊपर बाल आ गए तो लिखना बंद हो जाता था। तो महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसे ही झटका मार देते थे, ऊपर को झटका मारा बाल ऊपर को हो गए, फिर लिखना शुरू कर दिया। तो यही व्यवहार है नारायण, जब देखो कि अब ये शरीर भाव आया तो एक झटका मार दो बस। ये झटका मारना जो है यही निषेध करना है, और कोई निकाल के फेंक देने का नाम निषेध नहीं होता। कर्म का निषेध और होता है। अगर बोले वासना का निषेध करो, वासना का क्या निषेध करोगे, वासना के अनुसार कर्म ना करो तो वासना ढीली पड़ जाती है, और उसके अनुसार कर्म करोगे तो और पक्की हो जाती है। तो करने के क्षेत्र के लिए है, लेकिन वासना न मैं न वासना मेरी, ये जो झटका मारना है इससे भी वासना ढीली पड़ जाती है। नारायण तो कहते हैं नान्तः प्रज्ञम, तो मन का निषेध कर दो तो अंतः प्रज्ञ नहीं होगा। न बहिष् प्रज्ञम, इंद्रियों का निषेध कर दो तो बहिष्प्रज्ञ का निषेध हो गया। मैं इंद्रियों के द्वारा बाहर देखता हूं। अच्छा, इंद्रिय ना देखें तो क्या मैं रूप देख सकता हूं? नहीं देख सकता। अब अगर वासना है देखने की, और मान लो किसी की आंख न रहे और वासना है देखने की, तो बहुत भीतर तिल मिलाता रहेगा। और अगर वासना ना हो और आंख भी ना हो, भगवान की मर्जी ठीक है, हम भीतर खुश हैं। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज थे ना, मानव सेवा संघ वाले, तो खुद ही सुनाते थे प्रवचन में अपने में कि जब मैं बे में पढ़ता था, आजकल की समझ लो नर्सरी या केजी क्या होती है, पहले अलिफ बे चलती थी, अलिफ बे फिर एक, उर्दू का जमाना था ना वो, तो एक से पहले एक साल यानी छह महीने अलिफ में, छह महीने बे में, फिर उसके बाद कक्षा एक में आते थे। अब वो कर दिए हैं नर्सरी फर्सरी क्या कुछ नाम रख दिए हैं। बात तो सब वही है। तो जो कि जब मैं बे में पढ़ता था तब मेरी चेचक में आंखें चली गई। अब जब घर से प्रताड़ना मिली, अंधे को कौन रखना चाहता, उसकी सेवा करनी पड़ती है, तो मैं निकल गया। निकल गया, सन्यासी हो गया, तो यात्रा पर गया। अब पहले तो पैदल यात्रा ही होती थी, तो जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा था लाठी टेकता हुआ, तो एक आदमी ऊपर से आ रहा था, मैं ऊपर चढ़ रहा था, तो ढलान पे आदमी की स्पीड तेज हो जाती है, तो वो मेरे से टकरा गया। जब टकरा गया तो मैं उससे लड़ बैठा। बोले मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं दिखता है, तुझे तो दिखता है, मेरे को जो है टक्कर मार दी, गिर जाता तो क्या होता है। खैर उसने कहा बाबा माफ करो, जो हो गया मैंने जानबूझ के नहीं किया, चला गया। फिर आगे चले तो खुद ही एक पेड़ से टकरा गया। अब मैंने कहा, शरणानंद जी नाम था उनका, तो मैंने कहा शरणानंद अब लड़ इस पेड़ से लड़, तू आदमी से तो तू लड़ गया, इस पेड़ से लड़ कि इसने मुझे टक्कर क्यों मारी। तो सृष्टि में कुछ वासना दुख देती है और कुछ नहीं दुख देता है। तो भीतर यदि कर्म की वासना न हो, भोग की वासना न हो, तो इंद्रियों के होने न होने से कोई विशेष कष्ट नहीं होता, सामान्य हो जाता है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। अब समाधि में तो सब लोग जाना चाहते हैं, लगती नहीं है वो बात दूसरी है, लेकिन समाधि के प्रति आकर्षण तो है। लेकिन रोजाना भगवान समाधि भेजता है सुषुप्ति के रूप में, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। अगर उसी का विचार कर लें जागृत अवस्था में, तो वो समाधि ही है ना। स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त शिरोमणि जो थे, वो कहते थे भैया मुझको तो बस सुषुप्ति के विचार से ही ज्ञान हुआ। सुषुप्ति का विचार जागृत में कर लो तो वहां सुषुप्ति में जो आत्मदेव शेष रह गए, वहां तो ऑटोमेटिकली सबका निषेध हो गया, करना कुछ नहीं पड़ा। तो अभी आगे आने वाला है ना प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशम, तो वह भगवान ही रोजाना कर देते हैं उपशम, मगर उसको देखते ही नहीं है, उसको विचार नहीं कर, देखते नहीं माने विचार नहीं कर। उस समय तो विचार नहीं हो सकता है, लेकिन जिस समय हम स्वाध्याय करें विचार करें, उस समय तो विचारना चाहिए ना। तो न प्रज्ञान घनम, यहां वहां उपाधि दो हैं सुषुप्ति में, एक अज्ञान की उपाधि है और एक बीजात्मकता की उपाधि है। मैं सोने तो जा रहा हूं, लेकिन जो छोड़ के जा रहा हूं वो ही उठकर पकड़ लूंगा। जो काम आधा छोड़ के जाते हैं उसको अगले सुबह उठकर फिर पकड़ लेते हैं। तो ये जो बीज बना रहता है सुषुप्ति में, ऐसे ही पुनर्जन्म का भी बीज होता है। ये वासनाएं मेरी पूर्ण हो गई, ये रह गई हैं, चलो अगले जन्म में पूरी हो जाएंगे। तो जन्म तो जरूर देंगे वो वासना। न प्रज्ञम, ईश्वर बनने की कोशिश मत करो। ईश्वर प्रज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन व्यक्ति होकर के सब कुछ नहीं जानता। उसकी उपाधि क्या है ईश्वर की? माया। और कितनी बड़ी है माया। तो उपहित कितना बड़ा होगा फिर? ईश्वर बनने की कोशिश मत करो। ईश्वर प्रज्ञ है, लेकिन यहां तो कह रहे हैं जो प्रज्ञ है वो आत्मा नहीं है, वहां उपाधि बड़ी है, ये ठीक है, लेकिन है तो उपाधि मान्य, और आप ईश्वर हो भी नहीं सकते। एक सज्जन कह रहे थे, महात्मा ही थे, बोले हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जो अपने को ब्रह्म कहता है वो नास्तिक है। ठीक ही है, वो ब्रह्म का मतलब ईश्वर समझते होंगे। ब्रह्म का मतलब अगर ईश्वर समझता है कोई और फिर अपने को मैं ब्रह्म हूं ऐसा सोचता है तो नास्तिक है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, निरुपाधिक है, निर्माय है। क्या कोई लूला लंगड़ा बनना चाहता है? कोई नहीं चाहता। ब्रह्म तो निष्क्रिय है। अब बोलो, अब ब्रह्म स्वीकार हो गया अपने आप को? जड़ भरत को भुतेरा काम करवाने की कोशिश की, पिताजी ने जो है पढ़ाने की कोशिश की तो गायत्री याद करके ही नहीं दिए। बोले गायत्री सुना दी अगर तो कहेंगे अब ये शास्त्र पढ़ो, मूर्ख बन गए। आजकल कौन मूर्ख बनना चाहता? तो ब्रह्म तो निष्क्रिय तत्व है, और बड़प्पन जो होता है वो क्रिया से होता है। तो आपको यदि बड़ापन बनने की इच्छा है तो सत्कर्म कीजिए, बड़े बड़े कर्म कीजिए, मगर नेतागिरी मत कीजिए। क्योंकि नेता में तो बड़े भी बनते हैं और धरती में भी गाड़ दिए जाते हैं। स्टालिन की कवर खोद करके फिर निकाला। तो पंचदशीकार कहते हैं कि आप बड़े बनिए, आपकी परंपरा में जो बड़प्पन है, महात्माओं की परंपरा में बड़प्पन क्या है? बोले विद्या और त्याग, ये महात्मा का बड़प्पन है। अगर महात्मा है और ब्रह्म विद्या नहीं है तो भी वो शोभा नहीं है, और त्याग नहीं है तो भी वो शोभा नहीं है, और दोनों है तो इससे बढ़िया क्या है? पूर्ण बात यही बड़प्पन है। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थों का जो बड़प्पन है, समाज जिसको बड़ा कहे वही बड़ा होता है। अपने आप तो सभी बड़े होते हैं, तो न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, मूर्ख भी मत मानो अपने को। अप्रज्ञ माने मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। जो लोग कहते हैं ना, अरे नहीं नहीं मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। एक सत्संग में एक सज्जन आते थे तो उनकी आदत थी हर वक्ता की बात को काटना। अगर वक्ता भक्ति की बात करेगा तो ज्ञान की बात करेंगे, और वो ज्ञान की बात करेगा तो भक्ति की बात करेंगे, मतलब काटने की उनकी आदत थी। और फिर जब वो क्रॉस क्वेश्चन करता वक्ता, तो हम तो मूर्खानंद जी हैं, अपनी विनय दिखाने के लिए। तो एक दिन मैंने कहा, मैंने कहा सुनो मूर्खानंद मेरी बात सुनो। अरे महाराज नाराज हो गए, आप हमको मूर्खानंद कैसे कहते हो? तुम रोजाना कहते हो मैंने आज कह दिया तो क्या बात हो गई? तो मूर्खानंद का भी एक अभिमान है। ईश्वर बड़ा है लेकिन अभिमान नहीं है उसमें। तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार बड़प्पन अच्छा है, और ब्रह्म से बड़ा तो कुछ है ही, ब्रह्म माने ही वो उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, जिससे बड़ा कोई और ना हो। अदृष्टम, क्योंकि ज्ञान ज्ञानस्वरूप है इसलिए कभी वो देखा नहीं जा सकता, दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य नहीं हो सकता तो व्यवहारी भी नहीं हो सकता है। अग्राह्यम, किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता। अलक्षणम, अनुमान का भी विषय नहीं है, ये सब कल हो चुका है। अचिंत्यम, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर चिंतन करना है तो उसी का ही चिंतन करना चाहिए। उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ये सोचना ही उसका चिंतन है। अचिंतनम चिंतनम, महर्षि कहते हमने सूत्र लिखे थे तो मुकलपुर के बाबा को दिखाए, तो तब तो यूं कि हम छोटे ही थे तो बोले अभी से कागज काले करने शुरू कर दिए। तो हमने समझा कि इनको पसंद नहीं आए, तो हमने वो सारे सूत्र गंगा जी में फेंक दिए। तो जो कि कुछ थोड़े बहुत याद रहे आए हैं, तो उसमें एक सूत्र ये था, अचिंतनम चिंतनम, कुछ चिंतन ना करना ही ब्रह्म चिंतन है। तो कुछ चिंतन ना करना माने ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ चिंतन नहीं करना या ठप कर देना विचार को, तो दोनों बात है। सहज रूप से शांत हो जाओ तो आप स्वरूप में बैठे हो, वो भी ब्रह्म चिंतन है। और यदि आप सोचते हो कुछ, तो जैसे एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, एक बूंद के बाद सारी बूंदें एक दूसरे से मिलती जाती हैं, धारा बन जाती है, तो चिंतन का विषय यदि एक हो तो वो धारा बन जाती है, उसी को चिंतन बोलते हैं। वो सांसारिक विषय का भी हो सकता है, परमार्थ का भी हो सकता है। अचिंत्यम यहां तक हो गया था, अव्यपदेश्यम। अब चूंकि शब्द का विषय नहीं है इसलिए उसका व्यपदेश माने इशारा उपदेश नहीं किया जा सकता, ऐसा ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ही लगाने से तो सीमित हो जाता है ना। फिर कोई साधन तो बताओ, कुछ तो बताओ, कैसे पकड़े उसे। बोले एकात्म प्रत्यय सारम, बस यही है, यही साधन है इसका और यही चिंतन। कैसे कि ये देखो कि ये प्रत्यय माने वृत्ति में जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये ज्ञान उदय कहां से हो रहा है। अब मैं सबको जान रहा हूं तो बाहर चीजें देख रहा हूं और ज्ञान भीतर हो रहा है। अच्छा आंख बंद कर लो तब भी भीतर जो चीज पहले अनुभव की हुई है उनका ज्ञान हो रहा है। अब वो कहां से आ रही है वो ज्ञान। तो चाहे ज्ञान का केंद्र बाहर हो, चाहे ज्ञान का केंद्र मन के भीतर हो, लेकिन अनुभव जो है ज्ञान के विषय का वो तो भीतर ही होता है। तो ये कहां से निकल रहा है ज्ञान, इसका केंद्र कहां है। तो कहते हैं यह को छोड़ो, क्योंकि यह के सहारे चलोगे तो बाहर ही बाहर चलते जाओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। और मैं को पकड़ो तो बाहर से भीतर की ओर चलते चले जाओगे और फिर जहां से मैं उदय हो रहा है वहां शांत हो जाएंगे। दृष्टांत इसका गंगा जी का ही देते हैं कि गंगा जी की धारा जिधर को जा रही है तो चलते चले जाओ कहां पहुंचोगे, समुद्र में। और इसके उद्गम की तरफ चलो माने उल्टी उल्टी दिशा में चलो, जिधर से आ रहा है जल तो गोमुख पहुंच जाओगे जहां से गंगा जी निकल रही हैं। तो हमें तो वहां जहां से निकल रही है उसको आत्मा बोलते हैं और जहां जाकर के मिल जाती है उसको ब्रह्म बोलते हैं। देखो ग्लेशियर जो बनता है वो भी तो बर्फ से ही बनता है ना, और वो बर्फ पानी से ही बनता है, और वो पानी कहां से आता है, वो तो समुद्र से ही आता है। तो वो तो प्रकृति ने साइकिल अपना बना रखा है समुद्र से ऊपर उठा करके वहां बर्फ बनाया, फिर वहां से नदी बन करके फिर समुद्र में पहुंच गए। तो ये जो ज्ञान की धारा है ये आत्मा में से निकलती है और परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। नारायण सीमाएं अपनी तोड़ देती, जब तक नदी रहती है तब तक उसकी सीमा रहती है, दो उसके किनारे रहते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं बाकी उन्हीं सीमाओं में रहती है, और जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। अच्छा गंगा जी मान लो मिल गई समुद्र में जाके, तो वो जल कहां तक जाएगा समुद्र में? सारे संसार का समुद्र एक ही है, कहीं भी स्नान कर लो गंगा जल समझ के कर लो तो गंगा जी हैं समुद्र में। इसीलिए कहते हैं ना, समुद्र का स्नान कर लिया तो सब तीर्थों का स्नान कर लिया। वो बात दूसरी, एक नमक का पानी होता है तो फिर मीठे पानी से नहाना पड़ता है। तो आत्म प्रत्यय यानी ये जो अहम अहम है इसको पकड़ो, ये कहां से उदय हो रहा है तो आत्मा में पहुंच जाओ। तो कैसे कैसे पकड़ा, यह को छोड़ते जाओ बस।